نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیشتے اس کے کہ ہم گزشتہ اتوار کی جانے والی گفتگو آگے بڑھائیں، جو سوالات ہیں ان کے جواب دینا ضروری ہیں. کسی غیر ملک سے ایک سوال پوچھا ہے کہ حضرت آدم واز دا فرسٹ ہیومن بینگ، بٹ واز دیئر اینی ادر فارم آف ہیومنس بفور دی پریزنس آف حضرت آدم ان دس ورلڈ اور ان ادر وٹ ور نسناس. حضرت آدم پہلے انسان ہیں جو تخلیق کیے گئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جنات اور فرشتوں کا وجود ضرور تھا. یہ ایک اور سوال ہے جس میں مثالی کیا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. دیکھیے، روحانیت میں مختلف اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. روحانیت میں ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا فزیکل بینگ ہے، جو جسم ہمیں دکھائی دیتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اس کے ساتھ کا ایک اور جسم موجود ہے جو پیورلی روحانی ہے. جس طرح ہمارے جسم کی غذا یہاں دنیاوی کھانے ہیں، اور جتنا صحت مند کھانا ہم یہاں کھاتے ہیں اسی نسبت سے ہمارا فزیکل بینگ صحت مند ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے مثالی جسم کی غذا وہ ذکر اذکار ہیں جو ہم کرتے ہیں. جب ہم ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں، ایسے وظائف پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مماثلت رکھتے ہیں، روح کو سوٹ کرتے ہیں، تو ہمارا جسم مثالی صحت مند ہوتا ہے، ہماری روح میں لطافت آتی ہے. اور اگر ہم ایسے ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں جو ہماری روح سے مطابقت نہیں رکھتے، تو ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، زخمی ہونے لگتا ہے، اس کی پرواز میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ ذکر اذکار ایسی ہیں جو ہمارے جسم سے مطابقت بھی نہیں رکھتے اور اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہیں. اب اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں کافی پیچھے جانا پڑے گا، جبکہ ایک یا دو لیکچرز کے دوران اس موضوع پر ہماری بات ہوئی تھی پہلے، کہ جس طرح یہ کائنات اللہ تعالی کے ایک لفظ کہنے پر وجود میں آئی تھی، کن، اسی طرح ہر روح کا ایک کمانڈنگ ورڈ ہے. اس کی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں اور دوسرے الفاظ کی بھی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں. جب ہم ایسے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جو ہماری اس کمانڈنگ ورڈ سے، روح کے کمانڈنگ ورڈ سے مطابقت رکھتے ہیں، تو ہماری روح، ہمارا مثالی جسم طاقتور ہوتا ہے، ہماری روح کی پرواز بڑھتی ہے. اور اگر ہم ایسے الفاظ پڑھیں جو نہ مطابقت رکھتے ہیں نہ مخالفت رکھتے ہیں، تو ثواب ضرور ہمیں اس کا ملے گا. اسی طرح ایسے الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں جو مطابقت نہیں رکھتے، ثواب اس کا بھی ملتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہماری روح کمزور ہونے لگتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے وظیفہ الٹ گیا، وظیفے کے اثرات اس پہ الٹ گئے ہیں اور دماغ اس کا الٹ گیا. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا لفظ پڑھ رہا ہوتا ہے جس کے اثرات روح سے مطابقت نہیں رکھتے، اور اس سے ہمارا جسم مثالی ڈیمیج ہوتا ہے. یہ اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ ذکر کے دوران نیند آتی ہے، اس کا علاج بتا دیں. سب کوئی بھی اچھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، کوئی بھی اعلی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے مشقتیں کاٹنا پڑتی ہیں. तो नींद का तो एक आसान इलाज ये है कि दोपहर के खाने के बाद कैलुला कर दिया जाए, जिसको अंग्रेजी में कैट नैप कहती हैं। सोया ना जाए वो गलत है, लेकिन कैलुला कर लिया जाए, कैट नैप ले ली जाए एक, उससे फिर रात को नींद नहीं आएगी। दूसरा ये कि तमाम रात ना जागा जाए, वो तो वैसे भी यूं गलत हो जाएगा कि इंसान के जिस्म का भी हक है उस पर, और जिस्म को आराम दिया जाना चाहिए। तो हम इबादत इत्तदाल के अंदर रह के करें, इत्तदाल अल्लाह को पसंद है, इबादत में भी इत्तदाल अल्लाह को पसंद है। तो अगर हम रात को 4 घंटे गहरी नींद सो जाएं, यहां जवान आदमी की बात करता हूं, और दोपहर को कैट नैप ले ली जाए, तो मेरे ख्याल में नींद नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे एक बुजुर्ग के बारे में तो मैंने जरूर पढ़ा था कि वो इबादत इतनी कसरत से करते थे सारी रात, और अपने आप को ऊंग आने से बचाने के लिए अपने बाल छत के साथ रस्से से बांध लेते थे, ताकि जब वो ऊंग में जाएं तो झटका लगे उनकी आंख खुल जाए। लेकिन मेरी तजवीज ये होगी कि इस पे अमल न कीजिए, आप इबादत इत्तदाल के अंदर रह के कीजिए, ताकि रेगुलरली और तमाम उम्र आप वो इबादत कर सकें, वरना जोश और जज्बे में शुरू में हम अपनी हद से आगे चले जाएंगे, जो हम कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। थोड़ी इबादत जो बाकायदगी से और पाबंदी से की जाए, वो उस बकसरत इबादत से कहीं बेहतर है जो कुछ अरसे के लिए की जाए और फिर इंसान भूल जाए। अगला सवाल, शाह साहब, अगर हम जिंदगी के रोजमर्रा मामलात में किसी काम के करने या न करने का फैसला नहीं कर पाए, दिल कुछ कह रहा होता है और दिमाग कुछ, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं कि हमें दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की, या फिर जहां ये दोनों सूरतें बन जाएं काम को छोड़ देना चाहिए। दूसरा ये भी बताइएगा कि तबीयत में जल्दबाजी और बेसब्री पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इस कैफियत में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अब ये सवाल के पहले हिस्से का तो जवाब ये है कि एक तो हदीस मौजूद है कि जिस काम के करने में दिल में शुबा आ जाए उस काम को छोड़ दो, उसे ना करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस की मौजूदगी में किसी और गाइडेंस की जरूरत रहती नहीं। दूसरी बात यह है कि रब ताला ने हमें अकल अता फरमाई इसलिए कि वो हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सके। ये तारीफ तो मैं कर रहा हूं अकल की, लेकिन हजरत अली करमलवजो से किसी साहब ने अकल की तारीफ पूछी थी, तो जनाब हजरत अली करमलवजो ने फरमाया था कि अक्ल वो नहीं जो अच्छे और बुरे में तमीज सिखा दे, बल्कि अक्ल ये है कि अच्छों में बहुत अच्छे की तमीज सिखा दे। तो अक्ल अल्लाह ने अता ही हमें इसलिए की है कि हम अच्छे और बुरे में पहचान कर लें, और अगर उस मकाम पर जा सकें कि हम सभी काम अच्छे कर रहे हों और फिर अच्छों में बहुत अच्छे काम की तमीज कर सकें, वो तो बहुत आला मयार हो जाएगा। दिल आमतौर पर धोखा दे जाता है, उसका ताल्लुक जज्बात से है, लेकिन यही दिल जिसकी मैं बुराई कर रहा हूं कि ये धोखा दे जाता है। रूहानियत में अक्सर औकात दिल से उठने वाली आवाज सही होती है, अक्ल गलत गाइड कर जाती है। शुरू शुरू में जब मैं दिल की नहीं सुनता था, मगरबी तालीम के जेर असर दिमाग के पीछे जाता था, तो बहुत नुकसानात उठाए कि बारह ऐसा वक्त आया कि दिल से एक आवाज उठी कि ये ना करो। लेकिन जो लॉजिक है, जिसे अकल कहिए, इल्म कहिए, कुछ कह लीजिए, उसके मुताबिक वो सही था काम। लेकिन अंदर से आवाज बार बार उठती थी कि ये काम ना करो, फिर भी काम कर गुजरता था तो नुकसान उठाता रहा। रूहानियत में मामलात इसके बरक्स हो जाएंगे। इंसान दिल की सुनता है, अकल की नहीं सुनता। तो जब तक कि आप रूहानियत के एक ऐसे मकाम पर नहीं पहुंचते जहां आपका दिल सच्चाई की गवाही देने लगे, तो मेरे ख्याल में हमें अकल ही के पीछे चलना चाहिए। सवाल का दूसरा हिस्सा जल्दबाजी और बेसब्री के बारे में है। साहब, इसका तो एक सीधा सा इलाज है कि अपने रब पे भरोसा इस दर्जे का पाल लीजिए, और उस भरोसे से भी पहले एक चीज जहन में हम क्लियर कर लें कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं और वो कहां आके खत्म होती हैं, उससे आगे रब ताला के जिम्मे चले जाते हैं मामलात। हमारे जितने भी मामलात हैं, ख्वाह वो रूहानी हों या दुनियावी, दीनी हों या इस फानी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले, हमारे जिम्मे सिर्फ एक चीज है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी जिस्मानी और जहनी सलाहियतें अता फरमाई हैं, हम उनसे बेहतरीन काम ले लें, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल। और जब हम मुतमईन हो जाएं कि हमने मकदूर भर कोशिश कर ली है, उस अक्ल से भी मकदूर भर काम ले लिया जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, उस इल्म से भी हमने मकदूर भर काम लिया तदबीर करने में जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो उसके बाद हम मुतमईन हो जाएं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, अपना फर्ज पूरा कर लिया, अब इसका नतीजा मेरे रब के हाथ में है, वो जब जितना और जैसा चाहेगा आता फरमा देगा। और इसके बाद एक चीज बहुत जरूरी है कि हमारे जहन में पैदा हो जाए, वो ये है कि रब ताला से हमारी कोशिशों के नतीजे में जो कुछ भी अता किया जाए, कामयाबी, जुज़्वी कामयाबी या नाकामी, उसको हम इस ईमान के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ कबूल कर लें, तस्लीम कर लें कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। जो कुछ मेरे रब ने मुझे अता फरमाया वो यकीनन मेरे लिए बेहतर है। तो जब ये यकीन आ जाएगा, ये ईमान आ जाएगा, जुबान की हद तक तो सबका है, हमारा, मुझ जैसे इंसान का भी है, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं है इसके लिए। दिल में मेरे यही है कि मेरी कोशिशों का नतीजा वो मिलना चाहिए जो मैं चाहता हूं, और जब वो नतीजा नहीं आता तो फिर मैं तरह तरह की उसकी तावीलें निकालता हूं कि साहब सिफारिश चलती है, रिश्वत चलती है, अल्लाह ताला सोया है, मुआज़ल्ला, अल्लाह देखता ही नहीं, दूसरों को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, मुआज़ल्ला। ये सब ऐसी बातें जुबान से निकलती हैं मेरी, लेकिन अगर वो यकीन आ गया जो मैंने अर्ज किया, तो उसके बाद फिर माथे पर शिकन नहीं आती। नाकामियों को भी इंसान बड़ा हंस खेल के कबूल करता है। जब ये चीज आएगी तो बेसब्री और जल्दबाजी खुद ब खुद खत्म हो जाती, क्योंकि इंसान के दिल में सिर्फ एक बात रह जाती है, मेरा काम है कोशिश करना, फल देना मेरे रब का काम है, और वो मालिक है अपनी मर्जी का, और वो बेहतर जानता है मुझे कब कहाँ और कैसे और कितनी चीज चाहिए, वो अता करता है। तो ये बेसब्री और जल्दबाजी अस खुद चली जाएगी उससे। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि मोहम्मद यासीन चिश्ती मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शाह साहब आपकी चिश्ती साहब से मुलाकात कब कैसे और कहां हुई? शाह साहब चिश्ती साहब इल्म और रूहानियत के किस मकाम पर थे? ये तो शायद मैं बता ना पाऊं कि चिश्ती साहब इल्म के और रूहानियत के किस मकाम पर थे, क्योंकि इसका मैं अहली नहीं हूं। मेरे पास ना रूहानियत का कोई इल्म है, न मैं रूहानियत को समझता हूं कि रूहानियत है क्या बला, तो मैं किसी के मकाम के बारे में क्या अर्ज कर सकूंगा। अलबत्ता उनकी जो मुझसे मुलाकात हुई वो इस चीज की बड़ी एक फकीदुल मिसाल किस्म की मिसाल है कि इंसान धोखा कैसे खाता है दूसरों से। ये मैं उस पर आज तक हैरान हूं कि चिश्ती साहब जैसा तजर्बाकार आदमी मुझसे धोखा कैसे खा गया, वो मेरे धोखे में कैसे आ गए, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया इस राज को। उस जमाने में यहां मंडे को दुआ हुआ करती थी और खवातीन और मर्द एक ही जगह होते थे, क्योंकि रश इतना नहीं था। एक साहब मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं सिलसिले चिश्तिया में बैठ हूं, आपके पास हाजिर हुआ हूं। फरमाइए, हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? अब ये जुमला भी, अगरचे मेरा नफ्स बड़ा उससे खुश हुआ, लेकिन जहन हैरान हुआ कि ये साहब बज़ाहिर तो होशमंद और समझदार लगते हैं, ये कह क्या रहे हैं? कहने लगे, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। तो नफ्स तो बहुत राजी हुआ, मैं एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मैं बड़ा बहुत बड़ा वली अल्लाह हूं, बहुत इल्म के आला मकाम पे चला गया। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपको किसी ने मिसगाइड किया है जो यहां भेज दिया है। यहां तो एक आदमी वो बैठता है जो ढोंग रचाए हुए है, दुकान सजा के बैठा है, आपको यहां क्या मिलेगा? तो वो फरमाने लगे कि मैं आर्य बाजार में एक साहब हैं, मैं नहीं जानता उन्हें, नाम भी मुझे याद नहीं, उनके पास 35 साल रोजाना हाजिरी देता रहा हूं, खाली आया। तो अब मुझे वो बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ख्वाब में गाइड किया है कि मैं आपके पास चला जाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं हंसा के, ये तो उन्होंने सही कहा है, जो कुछ मेरे पास है उसमें से तो मैं यकीनन सब कुछ दे दूंगा, और वो है गुना, झूठ, फरेब, दगा, ये सब मैं कर दूंगा। ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, बैठ जाइए यहां पे। तो यूं वो मेरे पास बैठने लग गए। तो 2 साल के बाद उन्होंने, एक अदीब हैं खातून, उनसे फरमाया कि जिंदगी में बड़े बड़े ठंडे बुजुर्गों से मुलाकात हुई मेरी, लेकिन इतना ठंडा और धीमा शख्स मैंने नहीं देखा। तो अल्लाह ताला भी बात का भरम रख लेता है इंसान के। शायद रब को ये बात पसंद आ गई कि मैं किस कदर सच्चाई से बयान कर रहा हूं कि मेरे पास सिवाय धोखा, दगा, फरेब, गुनाह के और कुछ है नहीं, उसमें से तो मैं जरूर दे दूंगा आपको। तो रब ने वो एक ऐसा भरम कायम रखा कि 2.5 साल के बाद वो साहिब कश्फ हो गए। तो जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया तो मैं उनका मुंह बड़ी हैरत से देख रहा था कि ये साहिब कश्फ हो गए, भाई गुनाह में तो नहीं हो गए, क्योंकि यहां तो गुनाह ही गुनाह है। तो बाद में कुछ 2-4 वाकयात यहां दुआ पढ़ाने वालों के साथ ऐसे हो गए कि मुझे मजबूरन उनसे कहना पड़ा कि चीज आप तशरीफ ना लाया कीजिए। तो वो मकाम उनका मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या मकाम है, लेकिन ये जरूर हो गया कि मिलने का किस्सा मैं बता सकता हूं, वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि वो मालूम नहीं किस शख्स के धोखे में आए थे मेरे पास, अल्लाह ने शायद उसी आदमी की इज्जत रख ली और उनको यहां से साहिब कशफ करके भेज दिया। ये सवाल है कि मुसलमान और सिखों में अक्सर इख्तलाफात रहती हैं। सिख काम का ये कहना है कि मुसलमान जानवर को ज़बह करके उनका खून बहाते हैं, मुसलमान उनको तकलीफ देते हैं। सिख कहते हैं कि जानवर को बगैर ज़बह किए जानवर को मारा जाए, और सिख अपने जिस्म के बाल नहीं कटवाते, सर के बाल और चेहरे के बाल लंबे रखते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये मालूम नहीं इन साहब ने किस जमाने के मुसलमानों और सिखों में इख्तलाफात का जिक्र किया। आज अगर हम अपने रवैयों को गौर से देखें तो खासी मुमासलत दिखाई देती है, एक दूसरे से काफी मिलते हैं। हम भी करने से पहले नहीं सोचते, करने के बाद सोचते हैं, और जज्बाती हम भी बहुत हैं। ये जानवर को ज़बह करने का इख्तलाफ सिर्फ सिखों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दूसरे मजहब में भी है। सिर्फ यहूदी उस तरीके से जानवर को ज़बह करते हैं, मैं हलाल नहीं कह रहा, ज़बह कह रहा हूँ, ज़बह करते हैं जिस तरीके से मुसलमान ज़बह करते हैं। फर्क यह है कि मुसलमान का ज़बह किया हुआ गोश्त हलाल होता है और यहूदी का ज़बह किया हुआ गोश्त हलाल के जिम्मे में नहीं आएगा, वो कोशर होता है। लेकिन सिख और ईसाई जिस तरह से ज़बह करते हैं वो ज़बह नहीं होता। ज़बह और हलाल में फर्क ये है कि एक मखसूस तरीके से अगर जानवर का गला काटा जाए और उसकी खाल वगैरह उतारी जाए, गोश्त बनाया जाए, वो ज़बह कहलाएगा। और उसी तरीके से अगर जानवर को ज़बह हम करें और अल्लाह का नाम ले लें तो हलाल कहलाएगा। ये जो हमें तरीका सिखाया गया या यहूदी जिस तरीके पर अमल करते हैं ज़बह के, उसमें शारक काटी जाती है जानवर की और उसको फिर एज इट इज छोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि उसकी रगों में जो खून मौजूद होता है वो सारे का सारा बह जाता है, उसका जिस्म खून से खाली हो जाता है। तो जब वो खून बह चुकता है तो उसके बाद उसका सर अलग-अलग किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। अगर हम झटके से उसको करें तो खून बह नहीं पाएगा, फिलफौर खून रुक जाएगा, और खून में जमने की सलाहियत बहुत ज्यादा अल्लाह ने रखी है कि फौरी तौर पे जम जाता है। तो वो खून उसके जिस्म के अंदर जहां जहां है वहीं जम जाएगा। अभी जो रिसर्च हुई उसके नतीजे में ये कहा जाता है कि खून बैक्टीरिया का बेहतरीन कैरियर है। तो चूंकि खून सारे का सारा अंदर रह गया तो उसके अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया वो भी अंदर ही मौजूद है उसके। तो जब वो गोश्त खाया जाएगा तो जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाएंगे, उससे बीमारियां लाहक होती हैं। लेकिन जब हम ज़बह करते हैं तो खून सारा बह जाता है और उसके साथ ही जानवर के जिस्म में पाई जाने वाली बैक्टीरिया वो भी साथ ही निकल जाते हैं। मुसलमानों को एक चीज और रब ताला ने सिखाई, जो अगर चीज सवाल में तो नहीं है लेकिन वो वैसे मैं अर्ज कर दूं कि ये जो शर्त है कुर्बानी के जानवर पर कि वो उसकी उम्र कम से कम एक साल जरूर होनी चाहिए दुम्बे की या बकरे की, और अगर एक साल से जरा कम है लेकिन वो देखने में एक साल से ज्यादा दिखाई देता है, इतना सेहतमंद है, तो वो जायज है। उसके पीछे वजह यह है कि अभी जो नई रिसर्च है वो ये है कि जो बकरे दुम्बे या भेड़ جب تک کہ یہ ایک سال کے نہیں ہوتے ان کے جسم میں ایک مخصوص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ایک سال سے کم. یورپ میں اور امریکہ میں مجھے ایک تجربہ ہوا کہ وہاں مسلمان فیملیز جو بس رہی ہیں, حلال میٹ کی شاپس ہیں, وہ جاتے ہیں اور لیمب مانگتے ہیں. وہ لیمب جو ہے وہ عام طور پر 3 مہینے 4 مہینے کا ہوتا ہے. اس کو خوراک اس قسم کی دی جاتی ہے کہ اس کا گوشت بہت بڑھ جاتا ہے اتنی عرصے میں, وہ اپنی عمر سے 3-4 گنا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے. کمرشل طریقہ ہے ان کا. ہمارے جو مسلمان فیملیز وہاں رہتی ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی پک جاتا ہے گوشت, ایفرٹ کم ہے اس میں. وہ پکتا ہی اس لیے ہے کہ پوری طرح میچور نہیں ہوا ہوتا. میری رسائی جہاں تک ہے میں ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لیمب نہ کھایا جائے. وہاں کچھ کلاسیفیکیشنز ہیں, مٹن ہے, شیپ ہے, لیمب ہے. تو جو بکرا 1 سال سے اوپر کا ہے اسے وہ شیپ کہیں گے. وہاں تو بھیڑ ہے زیادہ, بکرا تو رکھنے کا رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ایک مہم چلی تھی ایک زمانے میں کہ یہاں بکریاں نہ پالی جائیں بلکہ بھیڑیں اور دمبے پالے جائیں. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جب بکری گھاس کھاتی ہے یا کوئی جڑی بوٹی کھاتی ہے چھوٹی, تو اس کو دانتوں میں پکڑ کے کھینچتی ہے. جس جگہ پر دانت ہوتے ہیں وہیں سے انہیں کترتی نہیں ہے بلکہ کھینچ لیتی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جڑ سے نکل آئے گا پودا, باہر کھا جاتی ہے بکری. اس کے مقابلے بھیڑ یا دمبا اس کو کترتا ہے, جہاں تک اس کے دانت گرفت کرتے ہیں وہ کتر دیتا ہے وہیں سے. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور ہماری زمین اور پاپولیشن کی ریشو اس وقت خاصی آؤٹ ہو رہی ہے. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 3 سال پہلے جو ایسٹیمیٹ کیے گئے تھے 1.2 بلین سے بڑھ کے 1.6 ہو گئی بھی تھی, اور ایک اندازہ یہ تھا کہ اب موجودہ پاپولیشن مسلمانوں کی پوری دنیا میں 2 بلین ہوگی. جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے زمین پر, تو ہمارے وسائل کم ہو رہے ہیں, وہ کافی نہیں کہ پاپولیشن کو فیڈ کر پائیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہائی بریڈ کراپس کی طرف دنیا چلی گئی آج سے 20-25 سال پہلے, اور ایک ہی بیج سے جو پیداوار ہے وہ 3-4 times کر لی. اسی طرح ایسا فوڈر, جانوروں کا چارہ فوڈر لگایا جاتا ہے زمین میں, جو اگر ایک بار آپ بو دیں تو کئی سال تک وہ چلتا ہے. اس کو انگریزی میں الفا الفا کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم اردو میں اس کا کیا نام ہے, لیکن وہ ایک بار اگر لگا دیا جائے تو کئی سال تک وہ دیتا رہتا ہے فصل. اس کو بچانے کے لیے یہ مہم یہاں چلی تھی کہ ہم بکریاں نہ پالیں بلکہ بھیڑ اور دمبے پالیں. چاہے بھیڑ ہو, بکری ہو یا دمبا, 1 سال سے کم عمر کا نہ کھائیے. 1 سال یا اس سے زیادہ عمر کا جانور کا گوشت کھائیے تاکہ بیماریوں سے بچے رہیں. ہم شاید لاسٹ نشست میں ہم کانشیس مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ, یہ 3 ذہن کے 3 حصوں کی بات کر رہے تھے. آج آپ سے گفتگو کرتے کرتے مجھے ایک خدشہ یہ ہوا کہ کہیں ہم میں سے کچھ لوگ میری گفتگو سے ایک امپریشن یہ نہ لے لیں کہ جو کانشیس مائنڈ ہے وہ اور کانشیس لیول یہ دونوں ایک ہیں. ایسا نہیں ہے. جو کانشیسنیس ہے وہ اور ہے, और कॉन्शियस माइंड और है। जिस तरह रब के कई नाम हैं, उसको हम पावर भी कहते हैं, उसको इन्फिनिटी भी हम कहते हैं, उसको अल्टीमेट भी हम कहते हैं, उसको गॉड भी कहते हैं, उसको अल्लाह भी कहते हैं, और मुझ जैसे गुमराह लोग और भटके हुए लोग जिनके पास इल्म नहीं है वो उसे रब भी कहते हैं। मेरे अंदर और तो कोई तौफीक है नहीं कि मैं रब का शुक्र अदा करूं, तो मैंने एक शॉर्टकट ये ढूंढा कि अल्लाह ताला को मैं रब कह दूं। मुझे यूं महसूस होता है कि जब मैं उसे रब कहता हूं और वो आवाज अगर मेरे दिल से उठे तो उसके पीछे शुक्रगुजारी और एहसान मंदी का जज्बा होता है, अगर उठे। ये नहीं मैं सजेस्ट कर रहा कि मेरे दिल से उठती है आवाज, ऐसा नहीं है, रवानी में रब कह देता हूं, लेकिन अगर वो दिल से निकलती है तो उसके पीछे एहसास तशक्कुर होता है, एहसान मंदी का जज्बा होता है, एक शुक्रगुजारी होती है कि ये वो हस्ती है जो मुझे पालता है। और ये लफ्ज पालना अपने वसी तरीन मायनों में आएगा। रोजमर्रा की जुबान में अगर हम पालना कहें तो उससे हमारी मुराद ये होगी कि रब हमें रोटी देता है, लेकिन ये वसी मायनों में जब इस्तेमाल होगा तो वो ये मायने अपने अंदर रखेगा कि वो मेरी हिफाजत करता है, वो मेरी तमाम तर जरूरियात का ख्याल रखता है, उनको पूरी करता है, वो मुझे इस दुनिया में रहने के काबिल करता है कि इल्म अता करता है, अकल अता करता है। तो ये पालना इन मायनों में आ जाएगा कि जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जहां वो मुझे लुक आफ्टर ना करता हो। तो यूं अल्लाह को मैं रब कहता हूं कि चलिए इसी बहाने मैं कहीं रब का शुक्र अदा कर दूं कि जो कुछ वो एहसान मेरे ऊपर कर रहा है। जिस तरह दरूद शरीफ के बारे में मेरी गुजारिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बुलंद मकाम पर फाइज हैं कि उनका कोई सानी नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो किसी इल्म वाले ने ये कहा था, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी बात यह है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपको दरूद शरीफ की जरूरत नहीं है, जो शाफिए मैशर हैं उनको किस चीज की जरूरत है कि अपनी उम्मत के, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मोहताज थोड़ी है कि उम्मत उन पर दरूद शरीफ भेजे। दरअसल जो हम दरूद शरीफ भेजते हैं, दरूद पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये भी शुक्रगुजारी का एक अंदाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर एक इतना बड़ा एहसान किया कि रब ताला का सच्चा पैगाम हम तक पहुंचा दिया, खुद तकलीफें उठा के वो पैगाम हम तक पहुंचाया। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस शुक्रगुजारी के नतीजे में, और तो कुछ हम कर नहीं सकते, तो दुरूद और सलाम जरूर भेजते हैं। इसी तरह रब ताला की शुक्रगुजारी अगर और तरीके से नहीं कर सकता मैं, तो कम से कम उसे मैं रब मानते हुए रब तो कह दूं, तो उससे मैंने उसकी इस एहसान का कि वो मुझे पालता है, तो उसको एक्नॉलेज कर लिया है। درود شریف کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک درود شریف کے بارے میں ایک اچھی چیز میں عرض کر دوں آپ سے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ان اللہ پڑھتے ہوئے اگر اسے ڈھونڈا جائے تو مل جاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات ہم باتیں بھول جاتے ہیں، تو اگر درود شریف دل میں پڑھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ بات ہمیں یاد آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات یاد آ جائے گی۔ یہ کسی زمانے میں یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری نظر سے گزرا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو درود شریف پڑھو اور اسے یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ تو اکثر لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ چیزیں بھول جاتا ہوں، تو یادداشت تیز کرنے کے سلسلے میں دعائیں جو بھی کیں اور اس کے جواب جو آئے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف صورتیں آتی رہیں کہ یہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کی میموری شارپ ہو جائے گی۔ تو اس میں زیادہ تر جو صورتیں تھیں وہ تھیں سورہ یوسف، سورہ آل عمران، اور اسی طرح بابا صاحب نے، بابا فرید گنشکر رحمتہ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کو قرآن حفظ نہیں ہوتا وہ اگر سب سے پہلے سورہ جمعہ حفظ کر لے تو قرآن آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے۔ یہ جناب بابا صاحب کے فرمان کو میں نے کئی لوگوں کے گوش گزار کیا اور تجربہ یہ ہوا کہ واقعی قرآن پاک جلدی حفظ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔